एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाली किताब पर बात करने वाले हैं, केट बॉलर की एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड अदर लाइज आई हैव लव्ड।
हाँ, और इससे जुड़े जो कुछ विश्लेषण हैं उन पर भी हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
बिल्कुल, हमारे पास इस किताब के कुछ हिस्से हैं, बॉलर की अपनी कहानी है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल पर उनका काम और फिर कैंसर से उनकी लड़ाई, ये सब जुड़ा हुआ है।
और हमारा मकसद है कि बॉलर की कहानी को समझें, दुख को लेकर जो आम बातें कही जाती हैं, उन पर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उनको परखें।
हाँ, और देखें कि आस्था, शक और मुश्किलों से जूझने की जो हिम्मत है, उस बारे में उनके अनुभव से क्या सीखा जा सकता है। तो चलिए इसे और समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक अजीब सी विडंबना से जो इस कहानी के बिल्कुल बीच में है। जब उनका करियर, उनकी निजी जिंदगी सब कुछ बढ़िया चल रहा था,
एकदम पीक पर,
उन्हें पता चलता है कि उन्हें स्टेज 4 कोलन कैंसर है। ये तो किसी को भी हिलाकर रख दे।
बिल्कुल, ये सिर्फ विडंबना नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा टकराव है, बौद्धिक भी और मतलब भावनात्मक भी।
सही कहा।
आप सोचिए, आप जिस चीज का इतनी गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, जिस विश्वास के सिस्टम की परतें खोल रहे हैं,
हाँ,
वही चीज आपकी अपनी जिंदगी पर इतने मुश्किल तरीके से सवाल खड़ा कर दे। उनकी पहली किताब थी ब्लेस्ड, वो इसी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का इतिहास था।
अच्छा,
और यहाँ वो खुद एक ऐसी हालत में थीं जहाँ इस सोच के सारे वादे एकदम खोखले लग रहे थे।
तो इस कैंसर के पता चलने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, मतलब एक तस्वीर अगर बनाएं तो?
तस्वीर काफी अच्छी थी, मतलब वो एक कामयाब एकेडमिक थीं, ड्यूक डिविनिटी स्कूल में प्रोफेसर, शादीशुदा थीं, एक बेटा था, खुशहाल परिवार।
हाँ, तो उनका जीवन वैसा ही लग रहा था जैसा शायद प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले कहते हैं, एक धन्य जीवन, है ना?
हाँ
एकेडमिक सम्मान, परिवार, भविष्य की उम्मीदें।
हाँ बिल्कुल, सब कुछ सही चल रहा था ऐसा लग रहा था। और ये जानना भी जरूरी है कि उनकी परवरिश विनिपेग कनाडा में मेनोनाइट समुदाय में हुई थी।
ओह अच्छा, इसका क्या महत्व है?
देखिए, मेनोनाइट परंपरा में ना, समुदाय पर, सादगी पर और दुख को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करने पर जोर होता है। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के व्यक्तिवाद और हमेशा जीतने वाली सोच से काफी अलग है।
हाँ, ये तो बिल्कुल उलट है।
तो शायद ये जो उनकी पृष्ठभूमि थी, उसने उन्हें बाद में जो संकट आया उससे निपटने के लिए एक अलग तरह का नजरिया दिया हो।
और फिर वो खबर आती है स्टेज 4 कोलन कैंसर, और डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद कुछ महीने ही बचे हैं, साल नहीं।
ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, ये तो जैसे उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पहचान, उनके भविष्य की हर उम्मीद पर एक चोट थी।
और यहीं से उनकी किताब का जो टाइटल है, Everything happens for a reason, and other lies I've loved, वो इतना इतना पावरफुल लगता है।
हाँ, वो प्यारे झूठ जिनसे मैंने प्यार किया, वो झूठ अब उनके सामने टूटकर बिखर रहे थे।
और यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है जो शायद सबसे अहम है, ये जो प्यारे झूठ थे, इनकी आलोचना।
बिल्कुल, जैसे ही लोगों को पता चला उनके कैंसर के बारे में, तो सलाहें मिलने लगीं, दिलासा देने वाले जुमले,
हाँ, वही सब जो हम अक्सर सुनते हैं,
वही वाक्य जिनका उन्होंने एक इतिहासकार के तौर पर अध्ययन भी किया था।
किताब में ऐसे कई किस्से हैं। लोग कहते सब कुछ किसी वजह से होता है, बस पॉजिटिव रहो, शायद भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है।
हाँ, या ये तुम्हारे लिए एक स्टेज है अपनी कहानी बताने का। एक किस्सा है ना किताब के दुकान वाला,
हाँ, कि एक महिला उन्हें कहती हैं कि उनका पॉजिटिव रवैया ही तय करेगा कि वो ठीक होंगी या नहीं।
सोचिए, जो इंसान मौत से जूझ रहा है उसे ये सुनना कैसा लगता होगा।
बहुत मुश्किल।
ये सिर्फ सुनने में बुरा नहीं है, ये अंदर तक चोट करता है। बॉलर एक इतिहासकार के तौर पर और अब एक मरीज के तौर पर इन जुमलों का विश्लेषण करती हैं। ये इतने क्रूर क्यों लगते हैं? क्योंकि अक्सर ये दोष मरीज पर ही डाल देते हैं।
अच्छा,
कैसे? कि भाई, अगर तुम ठीक नहीं हो रहे हो तो शायद तुम्हारी आस्था कमजोर है या तुम काफी पॉजिटिव नहीं सोच रहे।
हाँ, ये तो है।
बॉलर इसे कहती है सकारात्मकता का अत्याचार, मतलब एक ऐसा दबाव कि तुम अपनी असली भावनाएं जाहिर ही ना करो, अपना डर, अपना दुख, और इससे आप और अकेले पड़ जाते हैं।
ये बहुत बहुत अहम बात है, मतलब अच्छी नीयत से कही गई बातें भी नुकसान कर सकती हैं। जो भूमि है और उनकी जो बौद्धिक समझ है वो काम आती है। वो देखती हैं कि ये जो आसान से जवाब हैं, ये दुख की उसकी जटिलता को, उसके बेतुकेपन को नकारते हैं।
सही।
तो वो एक ऐसी भाषा ढूंढने निकलती हैं जो दुख के प्रति ईमानदार हो, जिसमें दर्द, शक, अनिश्चितता, इन सबको जगह मिले, उन्हें छुपाने या जल्दी से ठीक करने की कोशिश ना हो।
वो हमें चुनौती देती हैं कि हम खोखले दिलासों के बजाय सच्ची हमदर्दी दिखाएं, किसी के साथ बस मौजूद रहें।
बिल्कुल,
प्रेजेंस,
मौजूदगी।
तो अगर ये कहावतें, ये प्यारे झूठ काम नहीं करते, तो बॉलर किस तरह की सोच, किस तरह के दर्शन तक पहुंचती हैं, इस अनुभव से क्या निकलता है?
ये कोई एक दिन में हुआ बदलाव नहीं था, धीरे धीरे हुआ। लेकिन सार ये है कि वो जवाबों के धर्मशास्त्र से हटकर
उपस्थिति के धर्मशास्त्र की तरफ बढ़ती हैं।
जवाबों का धर्मशास्त्र और उपस्थिति का धर्मशास्त्र, इसे थोड़ा और समझाएंगे।
हाँ, मतलब इस सवाल का जवाब ढूंढना बंद कर देना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और इसके बजाय ईश्वर को या जीवन के अर्थ को उन लोगों के साथ में, उनकी हमदर्दी में खोजना जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ है, बिना कोई समाधान देने का नाटक किए।
उपस्थिति का धर्मशास्त्र सुनने में तो सरल लगता है, पर शायद निभाने में बहुत मुश्किल है, खासकर हमारी संस्कृति में जहां हर चीज का समाधान चाहिए।
बहुत मुश्किल। इसका मतलब है अनिश्चितता के साथ जीना सीखना, ये मानना कि जिंदगी नाजुक है, कि हमेशा कोई साफ वजह या अच्छी एंडिंग नहीं होती। बॉलर इसे कभी आशावादी यथार्थवाद कहती हैं या कट्टर ईमानदारी।
आशावादी यथार्थवाद, रैडिकल ऑनेस्टी।
हाँ, ये निराशावाद नहीं है, ये बस जीवन की सच्चाई को बिना लीपापोती के देखना है। इसमें दर्द की, गुस्से की, रोने की सबकी गुंजाइश है।
तो सवाल बदल जाता है।
हाँ, सवाल ये क्यों हुआ से बदल कर ये हो जाता है कि अच्छा, अब ये हो गया है तो हम जिएंगे कैसे।
ये नजरिया उनकी जिंदगी पर कैसे असर डालता है, खासकर जब उन्हें वो क्लिनिकल ट्रायल में जाने का मौका मिलता है, इम्यूनोथेरेपी वाला। वो तो एक तरह का समाधान ही था, है ना?
एक उम्मीद थी, एक मौका था, पर समाधान की गारंटी तो नहीं थी।
हाँ, सही बात है।
और यहीं पर अनिश्चितता वाली बात और गहरी हो जाती है। वो ट्रायल उन्हें पूरी तरह ठीक नहीं करता, वो उनकी स्थिति को मैनेज करता है।
अच्छा, मतलब नियंत्रित रखता है।
हाँ, तो उन्हें स्कैन दर स्कैन जीना सीखना पड़ता है। हमेशा ये डर बना रहता है कि कैंसर वापस आ सकता है।
ये तो बहुत मुश्किल होगा।
हाँ, और ये चीज उन्हें उस सोच से बाहर निकालती है कि या तो आप बीमार हैं या स्वस्थ। वो एक बीच की जगह में जी रही हैं, ना पूरी तरह बीमार ना पूरी तरह स्वस्थ।
एक बीच की स्थिति।
और ये अनुभव उन्हें सिखाता है कि जीवन हमेशा इन साफ साफ कैटेगरीज में नहीं बटा होता, और अर्थ अक्सर इसी अनिश्चितता, इसी नाजुक हालत के बीच मिलता है।
इस पूरी मुश्किल यात्रा में उनके रिश्तों का क्या रोल रहा? उनके पति टोबिन, बेटा जैक।
उनका रोल तो सेंट्रल था। उनके पति टोबिन, वो उस उपस्थिति के धर्मशास्त्र का जीता जागता उदाहरण बन जाते हैं।
अच्छा,
कैसे? स्रोत बताते हैं कि वो जवाब देने या स्थिति को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। वो बस मजबूती से केट के साथ खड़े रहते हैं। उनका प्यार, उनका साथ वॉलर के लिए एक एंकर बन जाता है। और बेटा जैक, वो तो जीने की सबसे बड़ी वजह बनता है। उसके लिए जिंदा रहने की इच्छा बॉलर को वो सारे मुश्किल इलाज और दर्द सहने की ताकत देती है।
ये उन खोखली कहावतों और असली मानवीय सहारे के बीच का फर्क दिखाता है।
बिल्कुल। एक तरफ वो लोग जो दूर से कह रहे थे पॉजिटिव रहो, और दूसरी तरफ वो लोग जो सच में साथ थे।
उनके ड्यूक के सहकर्मी, दोस्त जो खाना लाते थे।
हाँ, जो प्रैक्टिकल मदद करते थे। ये वही समुदाय है जिसका जिक्र हमने मेनोनाइट परंपरा के संदर्भ में किया था।
हाँ, सही।
ये दिखाता है कि संकट के समय सबसे कीमती चीज शायद शब्द नहीं बल्कि काम होते हैं। चुपचाप साथ देना, बोझ बांटना, प्यार जताना।
ये अलग ज्यादा सच्चा धर्मशास्त्र है, आपसी सहारे का, साझा इंसानियत का।
बिल्कुल।
तो इस सबका सार क्या है केट बॉलर की इस कहानी और इन स्रोतों से, खासकर उन श्रोताओं के लिए जो मुख्य बातें समझना चाहते हैं? वो अहम मोमेंट्स क्या हैं? मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं?
अगर हम सिर्फ स्रोतों पर ध्यान दें तो मेरे ख्याल से तीन मुख्य बातें उभरती हैं।
बताइए।
पहली, जो भावनात्मक स्तर पर है, ये समझना कि जबरदस्ती की पॉजिटिविटी कितनी खतरनाक हो सकती है और सच्ची उपस्थिति की ताकत क्या है। बॉलर का अनुभव हमें चेतावनी देता है कि कैसे हमेशा पॉजिटिव रहो या हर चीज का कारण होता है, जैसी बातें दुख को और बढ़ा सकती हैं।
इसके बजाय
किसी के दर्द में चुपचाप शामिल होना, थोड़ी प्रैक्टिकल मदद कर देना, या बस ये मान लेना कि हाँ, ये सच में बहुत बुरा है, ये कहीं ज्यादा मानवीय है, ज्यादा मददगार है।
बॉलर के किस्से, जैसे वो मरने वाले व्यक्ति से क्या कहें।
हाँ, वो हमें सिखाते हैं कि अक्सर सबसे अच्छा जवाब होता है कुछ मत कहो, बस साथ रहो। ये हमारी उस आदत को चुनौती देता है जो हर दुख का इलाज ढूंढना चाहती है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। दूसरी क्या है?
दूसरी बात थोड़ी बौद्धिक या दार्शनिक स्तर पर है, अनिश्चितता को अपनाने की जरूरत और पारंपरिक सफलता की कहानियों से हटकर भी अर्थ खोजना।
मतलब
बॉलर की कहानी हमें मजबूर करती है कि हम जीवन की अप्रत्याशितता, उसकी नाजुकता को स्वीकार करें। सफलता सिर्फ सेहत, पैसे या उपलब्धियों में नहीं है।
तो फिर किसमें है?
अर्थ मुश्किलों के बावजूद नहीं, बल्कि कई बार मुश्किलों के बीच ही मिलता है। रिश्तों की गहराई में, प्यार में, जीवन की छोटी छोटी खुशियों में। भले ही भविष्य पक्का ना हो, ये हमें सिखाता है कि जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देने में भी एक तरह की आजादी है।
और तीसरी और आखिरी बात,
तीसरी जो शायद व्यक्तिगत विकास से जुड़ी है, मुश्किल वक्त में बौद्धिक ईमानदारी और भावनात्मक रूप से खुलकर सामने आने का मूल्य, जिसे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। बॉलर ने अपनी अकादमिक समझ का इस्तेमाल किया अपनी हालत और लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने डर, गुस्से और दुख को भी पूरी ईमानदारी से महसूस किया और लिखा।
उन्होंने अपनी कमजोरी छुपाई नहीं।
नहीं, ये दिखाता है कि असली ताकत दर्द को नकारने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में है, उसके साथ जीने और उसके बीच भी सच्चाई और जुड़ाव खोजने में है। यही ईमानदारी, यही वल्नरेबिलिटी उन्हें दूसरों से जोड़ती हैं।
उपस्थिति की शक्ति, अनिश्चितता को स्वीकारना और ईमानदारी का मूल्य, ये वाकई गहरे सबक हैं। और ये सिर्फ कैंसर के अनुभव तक ही सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन की किसी भी बड़ी चुनौती पर लागू होते हैं।
बिल्कुल।
और यहीं से हम आज की चर्चा के आखिरी विचार पर आते हैं, एक सवाल जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। एक ऐसी संस्कृति में जो पॉजिटिविटी पर इतना जोर देती है, जहां हर मुश्किल में कोई सबक या कारण ढूंढने का दबाव होता है, वहां हम अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किल घड़ी में सच्ची और बिना शर्त वाली उपस्थिति, वो मौजूदगी कैसे पैदा कर सकते हैं?
ये गहरा सवाल है।
हम जवाबों की अपनी जो एक अंदरूनी इच्छा होती है और जीवन के जो अक्सर ना समझ में आने वाले रहस्य हैं, उनकी स्वीकृति के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।